ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। राज्यसभा ने आज ऑयल फील्ड विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को स्वीकृति दे दी है। ये विधेयक खनिज तेलों की परिभाषा में विस्तार के बारे में है, जिसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हाइड्रोकार्बन, कोल बेड, मीथेन और शेल गैस शामिल हैं। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि खनिज तेलों में कोयला, लिग्नाइट और हीलियम शामिल नहीं होंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये विधेयक नीति स्थिरता, बुनियादी ढांचा साझा करना, कार्बन कैप्चर, अपराधीकरण को हटाना और विवादों का आसान समाधान सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ शब्दावली बदली गई है और इससे राज्यों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। लोकसभा में आज बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। इसमें विधेयक के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1970 तथा बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1980 को संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक से प्रत्येक बैंक खाते में नॉमिनी की संख्या वर्तमान एक से बढ़ाकर चार करने का विकल्प दिया गया है। विधेयक ऑडिटर के पारिश्रमिक का फैसला करने के लिए बैंकों को अधिकार प्रदान करेगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सरकार और विपक्ष के पांच दिन का गतिरोध समाप्त होने के बाद आज सामान्य रूप से चली। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाया गया। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा और प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह के विरुद्ध कथित रिश्वत के मामलों सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कुछ समय के लिए वॉकआउट किया। विपक्षी सदस्यों ने उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शून्यकाल के दौरान इन मुद्दों को उठाने को कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच संबंध बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि दोनों देश आने वाले दिनों में सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने और गतिविधियों के प्रभावी प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री ने चीन के साथ भारत के संबंधों में हाल की प्रगति के बारे में आज लोकसभा में कहा कि लगातार राजनयिक संबंधों को प्रतिबिंबित करने वाली हाल की घटनाओं से भारत और चीन के संबंधों में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में नए अपराध कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता लागू किए जाने पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये सच्चा सामाजिक न्याय है। श्री मोदी ने कहा कि देश औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का लागू होना उन आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है, जिनकी परिकल्पना हमारे संविधान में की गई थी। श्री मोदी ने चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वकीलों तथा चंडीगढ़ बार काउंसिल के सदस्यों को भी बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर 33% की दिव्यांगता वाले अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार के विजेता समाज के लिए आदर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका अनुसरण करके अन्य लोग और संस्थान दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित महायुति गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। मुख्यमंत्री के नाम के बारे में स्थिति अभी अस्पष्ट बनी हुई है। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में बृहस्पतिवार यानी 5 दिसंबर शाम 5 बजे होना है। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र स्थित दाची गांव के जंगलों में हुई मुठभेड़ में एक वांछित कट्टर आतंकवादी सरगना मारा गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मारे गए आतंकवादी की पहचान जुनैद अहमद भट्ट के तौर पर की गई है, जिसका संबंध आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा से था। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर सोनमर्ग क्षेत्र में सुरंग निर्माण स्थल के निकट 20 अक्टूबर को किए गए हमले के सिलसिले में इसकी तलाश थी। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप की सातवीं बाजी में ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और वर्तमान चैंपियन डिंग लिरेन के बीच मुकाबला जारी है। 14 बाजी के मुकाबले में लगातार 3 बाजियां ड्रॉ रहने के बाद दोनों खिलाड़ी 3-3 अंक लेकर बराबरी पर हैं। मस्कत में अंडर 19 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में आज रात 8:30 बजे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। भारतीय टीम सभी 4 ग्रुप मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 4 में पहुंची थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।